हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ राजेश प्रभु, हजार बुलाइए प्रभु जी। कल ऐसा है, हम लोग ना भुवनेश्वर आना चाह रहे हैं कल, तो हम लोग सोचे हैं कि यहाँ से 10 बजे निकलेंगे तो 12-1 बजे तक पहुँचेंगे भुवनेश्वर। वो 6 लोग या 5 लोग रहेंगे, ज़्यादा 5-6 कितने लोग रहेंगे?
7
आप लोगों का। पर अभी मैं आपको प्रभु जी बताता हूँ टोटल करके ना कितने वक्त आएंगे। ना हम एक ऑटो कर लेंगे आपको, मैं अभी फोन करता हूँ, मैं अभी एक क्लास दे रहा हूँ, फिर आप बात। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ प्रभु जी। ठीक है, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ पूछा। जी, अरे तो जैसे बताया था, महाप्रभु ने यहाँ पर आकर के सारों भट्टाचार्य उनको ले आते हैं अपने घर पे, और फिर यहाँ पर आकर के महाप्रभु उनको अपना षडभुज गौर रूप दिखाते हैं। आप सबने सुना था वहाँ पे पिछली क्लास में, तो यहाँ पर 6 हाथ वाला जो स्वरूप है भगवान का, अंदर विग्रह है जो कि यहाँ पर विराजमान है, वो विग्रह तो उनकी पूजा की जाती है यहाँ पर स्पेशली, जो कि भगवान ने 6 हाथ वाला अपना स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था, और उनको एकदम नास्तिकवादी से क्या बना दिया था, एक भक्त बना दिया था वैष्णव। और आकर के जैसे मैं बता रहा था प्रसाद के बारे में, तो उनके प्रसाद के बारे में वर्णन किया गया है। भट्टाचार्य जी ने कहा कि भगवान का महाप्रसाद पाते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वह सूखा हो, बासी हो, दूर देश से लाया गया हो, इसमें देश काल का विचार नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जगन्नाथ जी का प्रसाद यहाँ से लेके जाते हैं, और जब घर पहुँचते हैं तो खराब हो जाता है, कोई हमारे लिए लेके आए तो हम लोग बोलते हैं पुराना प्रसाद ले आया है, स्मेल आ रही है। लेकिन इसमें कहा गया है, शुष्क पयुषिता वापी नीतम वार दूर देशितः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य नात्र काल विचारेण। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए कि कौन से काल में बना है, ये क्या है, महाप्रसाद स्वयं जगन्नाथ जी के द्वारा किया है। तो ये भट्टाचार्य जी ने कहा, शिष्ट लोगों के बारे में वर्णन करते हैं, न देश नियमस्त्र न काल नियमस्ततः प्राप्त मात्रेन्दुत्र शिष्ट भोक्तव्य हरि प्रवेश। जो भी इस महाप्रसाद को ग्रहण करता है बिना सोचे समझे किस काल का बना है कब आया, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को क्या पड़ता है, प्राप्त कर लेता है, है ना। तो ऐसा करके महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया था और उनको काफी सारी भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। भट्टाचार्य जी जगन्नाथ मंदिर में गए, किंतु मंदिर पहुंचने से पहले चेतन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए, और चेतन महाप्रभु ने भट्टाचार्य ने चेतन महाप्रभु से पूछा, वो पूछते हैं पहले जाया करते थे जगन्नाथ मंदिर में, अभी कहाँ जाने लगे, गंभीरा, संभव भट्टाचार्य सामने जाते थे गंभीरा में, फिर जाते थे जगन्नाथ मंदिर। वो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ सामने, ये सार्वभौम भट्टाचार्य, इधर गंभीरा, इधर महाप्रभु, इधर सार्वभौम भट्टाचार्य, इधर जगन्नाथ, तो उधर जाते थे डायरेक्ट, उधर से अंदर से गेट है स्वर्ग द्वार से, उसमें एंट्री करते थे। वहां से जाने की बजाय वो कैसे करते थे, पहले गंभीरा जाते थे और फिर वहां जाते थे। तो पूछने गए तो क्या कहते हैं, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते हाइला मन प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। तो भट्टाचार्य ने चेतन महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भक्ति करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। भक्ति में अगर कोई श्रेष्ठ होना चाहता है तो क्या करना चाहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसा कहा, तो दो प्रकार का कीर्तन है, एक नाम जप और एक नाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब है जो संघ में किया जाता है, सबके साथ बैठ करके कीर्तन। नाम जप अपनी निजी सेवा है भगवान की, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये संकीर्तन कहलाता है। तो महाप्रभु ने कलयुग में बोला संकीर्तन, और आगे महाप्रभु अगले श्लोक को कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई और गति नहीं है हरि नाम के अलावा। तो भक्ति पदे मतलब कि मुक्ति पदे, कहते हैं किसी व्यक्ति ने अगर भक्ति का पद प्राप्त कर लिया तो मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। कई लोग भक्तों से पूछते हैं, अरे क्या जवानी में मोक्ष की ओर चल दिए, बोलते आपसे बोलते हैं जवानी में मोक्ष की ओर, अरे ये तो बूढ़ों का काम है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने भक्ति पद प्राप्त कर लिया उसने मुक्ति पद प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि भक्ति तो क्या है, भक्ति की दासी है कौन, मुक्ति। मतलब मुक्ति गेट के बाहर खड़ी रहती है और भक्तों की चरण रज ले लेके सिर पे लगाती है कि वो कौन सा दिन आएगा मुक्ति माता कहती है कि जब मुझे भक्ति प्राप्त होगी। तो जिस दिन भक्ति करने लगता है वो व्यक्ति, मुक्ति तो उसने उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पहले दिन इस्कॉन मंदिर आया और किसी भक्त ने कहा क्यों नहीं चैंट करते हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, भजो हरे कृष्णा, कहो हरे कृष्णा। जिस दिन ऐसे किसी ने कह दिया समझो उसकी मुक्ति। लेकिन अभी हम भक्त रोज 16 माला कर रहे हैं, रोज रोज मंदिर आ रहे हैं, इसका कारण है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में श्लोक में वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ते ते अनुकंपा सुम समेक्षमाण भोजन एवात्मम कृतम विपाकम। तो कहते हैं जो आपकी अनुकंपा चाहते हैं अपने विगत कर्मों से उत्पन्न सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, बता सकते हैं? व्हाट आर द टू थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बता सकते हैं कोई? आपकी कृपा, भगवान की कृपा और मेरा एफर्ट, ओके, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, दैट इज टू गेट द लव, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान की कृपा प्राप्त कैसे करेंगे, अभी ये सवाल है। आदमी कहता है मेरा प्रयास, एसोसिएशन और बताइए, और बोलिए जल्दी जल्दी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दो सबसे जरूरी की जरूरत,
साधु संग हरि नाम,
साधु संग हरि नाम,
ह्यूमिलिटी,
ह्यूमिलिटी इज वन, ह्यूमिलिटी, और दूसरा
टॉलरेंस,
टॉलरेंस। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं पे द प्राइस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस देन यू कैन गेट भक्ति। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अभी जाएंगे खाजा खाएंगे मंदिर में तो बोलेंगे भाई 10 रुपए दो तब एक खाजा मिलेगा, है ना? तो हर चीज को पाने के लिए उसके पीछे कुछ कॉस्ट प्राइस है। ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दो चीजें जरूरी है, विनम्रता और सहनशीलता, है ना? तेते अनुकंपम सुसमक्षमाणम, भगवान कहते हैं अगर मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में क्या करो, मेरी सेवा करते रहो, है ना? जैसे कहते हैं माम यो अभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समीते ते ब्रह्म भूया ही कल्पते। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग में जुड़ करके सेवा करता रहता है वो कैसा होता है, सा गुणान समीते ते, तीनों गुणों को पार करके क्या बन जाता है, ब्रह्म भूया ही कल्पते, वो ब्रह्मभूत अवस्था को पाता है। और ब्रह्मभूत अवस्था कैसी होती है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसको मेरी भक्ति प्रिय हो जाती है, क्यों, वो ब्रह्म भूत अवस्था में होता है, वो कभी किसी चीज के लिए न सोचता है न इच्छा करता है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, पहले तो सोचते रहते हैं किसके बारे में, दो चीजों के बारे में, इधर पास्ट इधर फ्यूचर, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। आदमी पूछो हरि बोल क्या हुआ भाई कहाँ हो, कहता है सोच रहा हूँ कल कैसा गुजरेगा। कई कई बोलते कहाँ हरि बोल कहाँ हो, कहता कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, आज में कोई जीता नहीं। तो ब्रह्म भूत अवस्था में कोई व्यक्ति रहेगा न सोचती न सोचेगा न कांक्षति, फ्यूचर में क्या मिलने वाला है उसकी कांक्षा। तो डिवोटी कहाँ रहते हैं, ये देखिए डिवोटी है, हमें सेवा करनी थी सब कथा में मग्न है, न सोचती न कांक्षती। वहाँ जगन्नाथ जी जाके सेवा कर रहे होंगे, ऐसी लीला चल रही है, न सोचित न कांक्षित, हो सकता है डांट पड़े तो अभी तैयार है बोले खा लेंगे, न सोचित ही न कांक्षित। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न रहती है हमेशा, कथा कीर्तन प्रसाद में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांक्षित समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है, मेरी भक्ति प्राप्त, भक्ति जो परम है भक्ति प्राप्त। तो ऐसे भक्ति पद ही मुक्ति पद है। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये ज्ञान प्राप्त किया तो उनका इतना प्रेम, अथाह प्रेम, अधिक प्रेम हो गया था महाप्रभु से, उन्होंने अपने घर पे महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया। जैसे भागवत के पांचवें स्कंद में भगवान कहते हैं, मैं दो चीजों के द्वारा भोग ग्रहण करता हूँ, अग्नि के द्वारा और ब्राह्मण के मुख के द्वारा। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण और कौन होगा? चैतन्य महाप्रभु। ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण मतलब स्वयं साक्षात कृष्ण उतर आए हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए सारंग भट्टाचार्य ने इसी घर में, जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस घर के अंदर जगन्नाथ भगवान को ऑफर करके बहुत सारा प्रसाद बनाया। और किसको खिलाने जा रहे थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने मना किया। सन्यासी जो होते हैं, महाप्रभु ने एक सन्यास धारण किया था, वैरागी भक्त। जब आपको कोई बुलाए अपने घर पे तो याद रखना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? महाप्रभु के दासों का दास है ना, तो दासों का दास हूँ। और हम पहाड़ बना के चावल खाने लगेंगे तो व्यक्ति कहेगा, कल तो लेक्चर दे रहे थे वैराग पे, अभी एक गुलाब जामुन पे ना पूरा ड्रामा कर दिए हैं। कई बार ऐसा होता है, लेक्चर देख के आया कोई व्यक्ति, व्यासासन से उठा, प्रसाद में जलेबी और दूध पे ही लड़ लिया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त को जैसा वो बोल रहा है वैसा उसको आचरण करने का प्रयास अधिक करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, सन्यासी की शिक्षा देना चाहता हूँ कि सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। बोले, नहीं नहीं आप आइए आइए, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का जो दामाद था वो बहुत ही नफरत करता था, किससे? सन्यासियों से, भक्तों से, जगन्नाथ से, सबसे। और उसका नाम क्या था? अमोघा, है ना, नॉट अमोघ लीला। उनका नाम क्या था? अमोघा। तो जो अमोघा था, ऐसा अमोघ वस्त्र था, अमोघ मतलब होता जो फेल नहीं होता है ना, ऐसा अमोघा था जो कभी फेल नहीं होता था। किस चीज में?
बुराई करने
में। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कभी फेल नहीं होते। बोले, प्रभु जी मौका देके देखिए, ऐसा ऐसा बोलेंगे उसके बारे में ना, आप नहीं जानते होंगे। अरे हम बताएंगे, आओ ना। ऐसे कभी बोलते हैं ना, आप उनको जानते हैं, अरे तुम क्या जानते हो, आओ ना इधर, आप बताते हैं तुमको। अमोघा, कभी फेल नहीं होगा मेरा क्रिटिसिज्म वाला शस्त्र, है ना। बोलते थ्री सीज कभी नहीं करना चाहिए, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड
कंपटीशन।
क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड कंप्लेन, चुगली नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्त का है नंबर वन, हमसे पूछो इसे बोलता है ना। तो क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कंप्लेंट्स नहीं करना है, और क्या नहीं करना है? कंपैरिजन नहीं करना। अगर आप देखेंगे तो ये सारे सीक्वेंस में है। पहले व्यक्ति कंप्लेंट करता है, ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। दूसरा व्यक्ति कहता, अच्छा ऐसा हुआ। दोनों का फिर कंपैरिजन, हमारे साथ तो ऐसा ऐसा किया, हमें तो गुलाब जामुन मिले, तुम लोग बड़े बेकार थे। कंपैरिजन, फिर क्या होता है?
फिर क्रिटिसिज्म,
फिर दोनों मिलकर के
हमारे।
तो स्टार्टिंग कहां से होती है? कंप्लेंट्स, देन कम्स कंपैरिजन, देन कम्स क्रिटिसिज्म। तो अगर इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म, निंदा से बचना चाहते हैं, जिन भक्तों ने प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, नाम अपराध पहला, उससे बचना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? नो कंप्लेंट्स, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता की मूर्ति स्वरूप बने और सहनशील बन जाए। मारो पीटो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, है ना, जैसे भी रखना है भगवान रखिए, ये क्या है, हम आपके दास ही बन के रहने वाले। ऐसा नहीं होगा दास को दबाया तो दास जो है ना वो ऐसे करके बोल मारने लग जाए, है ना। कभी ऐसा किया घास के ऊपर पाँव रखा और घास चुभने लगी हो किसी को, तुम मुझे रोंदते हो रोज, आज मैं तुमको रोंदूंगी, ऐसे बोला घास ने कभी? ग्रास। किसी पेड़ को पत्थर मारो तो क्या देता है? कभी ऐसा हुआ पत्थर मारा ऊपर से ईंट निकली हो? लेकिन हम ऐसा करते हैं, कोई हमको पत्थर वाला दर्द देता है तो हम उसको ईंट वाला दर्द देने का। भक्त का गुण है क्षमाशील, यू शुड फॉरगिव, और भूल भी जाना चाहिए, फॉरगेट। तो गिव और गेट के बीच में क्या है? जो दोज हु गिव दे गेट, दोज हु गिव दे गेट। तो वन हु फॉरगिव दे विल फॉरगेट। तो फॉरगेट भी करने के लिए पहले फॉरगिव करना। आदमी कहता है मैंने फॉरगिव तो किया लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाया, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? ही इज नॉट फॉरगिविंग, इसलिए फॉरगिव नहीं। गिव गेट, फॉरगिव फॉरगेट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। पीपल डोंट फॉरगेट बिकॉज दे डोंट फॉरगिव, वर्ल्ड ही बोल देते हैं प्रभु नो प्रॉब्लम, यू आर सो नाइस, तुझे मैं बताऊंगा, है ना, मन में चलता है अंदर। तो अगर समबडी विल फॉरगिव ही विल फॉरगेट ऑल्सो। आपके बच्चे ने कभी आज से 10 साल पहले आपकी माँ ने कभी आपको मारा हो, 25 साल पहले, आपको उसने फॉरगिव किया, इसलिए फॉरगेट है। अभी माँ बोलेगी, अच्छा माँ आपने मारा था, मैंने क्या किया था, तूने ऐसे करके मुझे ना बैट मारा था अपना, मम्मी आपने मुझे मारा क्यों,
लेकिन आप भूल गए क्यों, क्योंकि आपने फॉरगिव कर दिया था, ये मेरी माँ है। लेकिन हम दूसरे को फॉरगिव नहीं करते हैं, इसलिए फॉरगिव भी नहीं। तो फॉरगेट का फॉर्मूला है, तो भक्त क्षमाशील है। तो इस तरह से अमोगा जो था उसका वार कभी फेल नहीं होता था। वो आया और महाप्रभु कहने लगा, ऐसे होते सन्यासी। सारंग भट्टाचार्य ने कहा बस चुप। उन्होंने कहा नहीं चुप नहीं, ऐसे होते सन्यासी, तुम्हारे घर का आधा जगन्नाथ महाप्रसाद तो यहीं वेस्ट हो जाता है। इस सन्यासी को खिलाते हुए ड्रामा करता है गंभीरा में रहने का, खाता है इतना बड़ा बड़ा पहाड़ बना के। इधर वो खिला रहे थे और लीजिए और लीजिए, महाप्रभु मना कर रहे थे, लेकिन अमोगा आ गया और वो कंप्लेनिंग करने लगा। कंप्लेन किया, कंपेयर किया और फिर नहीं तो क्या, पहले कंप्लेन किया ज्यादा क्यों खिला रहे हो, फिर कंपेयर किया दूसरे सन्यासी नहीं खाते हैं, और फिर क्रिटिसाइज किया महाप्रभु को। क्रिटिसाइज करने से उसको क्या लगा, नाम अपराध लग गया। नाम अपराध लगने के कारण अमोगा की तबीयत खराब होती चली गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि मरने की स्थिति आ गई। लेकिन महाप्रभु कैसे हैं, क्षमाशील। महावदन्नाय, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरक्षे नमः। महाप्रभु ने उसके हृदय पे हाथ लगाया और तुरंत ही उसकी सारी बीमारी दूर हो गई। तो महाप्रभु ने उसको सिखाया, और वो महाप्रभु का जब चला गया वो समझ गया, मैंने क्रिटिसाइज किया इसलिए ये सारा अपराध के कारण मुझे दर्द सहना पड़ा है। महाप्रभु के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना की। महाप्रभु नाम नमो महावदन्नाय अवतार है भगवान के, उन्होंने कृपा किया और वो ठीक हो गया, उनका भक्त बना। तो इस तरह से सारंग भट्टाचार्य की अनेक लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। अंदर कुछ विग्रह भी हैं जो कि सारंग भट्टाचार्य जी को प्राप्त के घर के अंदर रखे जाते हैं, जो कि राधा रसिक राय जयपुर के, मतलब जो भगवान है अर्चा विग्रह राधा रसिक राय, भगवान का जो दर्शन है राधा रसिक राय जीव, तो ये जयपुर राजस्थान से आए थे भगवान, क्योंकि वहाँ के जो पुजारी थे पंडित चंद्र शर्मा जयपुर के, उनको रात्रि में आकर के भगवान ने कहा मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, सारंग भट्टाचार्य जी के घर पे पूजन चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक माता रहती थी जिनके कारण ये गंगा जी जो है ना श्वेत गंगा कहलाती, सफ़ेद रंग की गंगा जी। तो एक माता जी थी जिनका एक अपीयरेंस भी आता है हमारी वैष्णव बुक के अंदर। अभी एक माता जी ने पुस्तक निकाली है वैष्णवीज, वैष्णवीज के ऊपर, क्या नाम है, वैदिक वैष्णवीज। उसमें सात ऐसी वैष्णवीज के नाम है जो हमारे भागवत से हैं, जैसे कुंती महारानी, उसमें एक चरित्र इनका भी है गंगा माता गोस्वामिनी। एक ही ऐसी माता है जो कि गोस्वामिनी कहलाएं, गोस्वामी तो बहुत हैं लेकिन एक गंगा माता गोस्वामिनी। स्त्री शरीर को कहते हैं भक्ति प्राप्त नहीं होती, माता जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया स्त्री शरीर का भी। उन्होंने कह दिया स्त्री तो शरीर होता है, मैं कौन हूँ आत्मा, आत्मा भगवान का भजन करेगी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये नवदीप में यहाँ पर गंगा माता के नाम से, इस मठ को गंगा माता मठ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि तकरीबन महाप्रभु से 300 वर्ष पूर्व सची माता एक थी, सची देवी, जो कि राजा की संतान थी। और वो सची माता जो है ना, वो वाली सची माता नहीं, चेतन महाप्रभु की माँ, ये जो सची माता थी राजा नरेश नारायण के घर पे उत्पन्न हुई थी, राजा नरेश नारायण। और ये भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आसक्त थी, उनके श्रृंगार के प्रति, कीर्तन के प्रति। तो ऐसी माता जो थी हमेशा गुरु की तलाश में थी, क्योंकि गुरु मिल जाए जिससे मैं क्या करूँ, दीक्षा प्राप्त करूँ। वो वृंदावन में यमुना के रेतीले टीले के ऊपर बैठ के तपस्या किया करती थी, गोविंद देव जी के मंदिर को साफ करती थी, वृंदावन में गोविंद राधा गोविंद मंदिर को साफ करती थी, और सुर उपासना करती थी, प्रतिदिन नाम जप करती थी, गोवर्धन परिक्रमा करती थी, व्रजमंडल परिक्रमा करती थी, बहुत तपस्या करती थी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने नियमित भक्ति के कारण हरिदास ठाकुर के मन में क्या कर दिया, प्रेरणा जागृत कर दी कि ये बहुत बढ़िया उत्तम भक्त है। तो हरिदास ठाकुर जी के द्वारा उन्हें आदेश दिया गया, हरिदास ठाकुर उनके लिए घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके लाते थे और फिर उनको खिलाते थे कि तुम इतनी अच्छी भक्ति करते तो मेरे से ये प्रसाद भी लो। उन्होंने फिर हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा भी दिया, उनका नाम दिया गया था ये गंगा माता गोस्वामी ने, वो बाद में कहलाएं। तो जो ये गंगा माता हैं इनको शची लक्ष्मी प्रिया नाम था इनका, जैसे हमारे पास है ना लक्ष्मी प्रिया माता जी कहाँ हैं बोले, ऐसे उनका नाम था सची लक्ष्मी प्रिया, तो लक्ष्मी प्रिया थी, बाद में गंगा माता उनको दीक्षा का नाम मिला। फिर उनको आदेश मिला हरिदास ठाकुर के द्वारा कि तुम यहाँ पर आओ, कहाँ पर, सार्वम भट्टाचार्य के घर पे, और इस स्थान पर बैठकर के क्या करो, भागवतम का प्रचार करो। तो इस घर में श्रीमद् भागवत का प्रचार किया करती थी गंगा माता, है ना। और ये जो गंगा जी है, ये गंगा माता के कारण यहाँ पर इसको गंगा स्थान दिया गया, गंगा स्नान के लिए गंगा स्थान है ये। तो गंगा माता गोस्वामिनी का ये स्थान है। तो वहां से राजा रसिक राय, राधा रसिक राय भगवान जो हैं जयपुर के पंडित चंद शर्मा को रात्रि में स्वप्न दिए कि जाओ इस अंचल विग्रह को गंगा माता को देना और कहना गंगा माता इनकार ना करे और इन विग्रहों की सेवा करे स्वप्न। तो अभी स्वप्न में आके बोला तो पंडित जी आए और आकर के अपने विग्रह को सार्वम भट्टाचार्य के घर पे जो गंगा माता थी उनको प्रदान कर। तब से ये गंगा माता गोस्वामिनी प्रसिद्ध है, उनके राधा रसिक राय जी प्रसिद्ध है, राधा रसिक राय की पूजा करती थी। श्रीमद् भागवत का यहाँ पे निरंतर पाठ होता था, हरि नाम का रेगुलर कीर्तन होता था, और वो कई कई मालाओं का, हरिदास ठाकुर की तरह कई सौ माला, इसमें वर्णन नहीं है और मुझे भी याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, कई मालाओं का हंड्रेड्स एंड अबव हुई होगा, तो उतनी माला का जप करती थी। हाँ, किसी को याद है, 128 128 मालाओं का जप करती थी। तो शुक्ला एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत ही प्यारा उत्सव होता है, का जो एक आती है ना शुक्ला एकादशी, अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन, एकादशी के दिन यहाँ पर पूरा बोलते हैं ये पानी व्हाइट हो जाता है, श्वेत गंगा बन जाती है व्हाइट कलर की, उनका अपीयरेंस बताया जाता है गंगा माता जी का। और यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है, सबको फीस फ्री में खिलाया जाता है विदाउट एनी प्राइस, तो ये होता है। तो यही गंगा माता गोस्वामिनी के चरित्र है। और सारम भट्टाचार्य जी का आपको वर्णन किया है कि षटभुज रूप यहाँ पर दिखाया गया, उसके दर्शन अंदर है, और चैतन्य महाप्रभु की अमोघा वाली लीला भी इसी घर पे हुई थी, इसी घर। फिर तो ऐसे अनेकों अनेकों चीज़ें हैं, महाप्रभु का ये 18 साल महाप्रभु इन स्थानों पे आए हैं, रहे हैं, तो यहाँ की एक एक मिट्टी, एक एक ईंट पूजनीय है। जहाँ दंडवत करें वहीं भगवान है, तो हम चले दंडवत करें, कलयुग का नाम संकीर्तन करें और अपने जीवन को खुश रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। राधा कौन लेना, राधा रानी से।